ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री आवास पर इस समय एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जोरदार तरीके से उठाया है। साथ ही आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन उपलब्ध कराने संबंधी पाकिस्तानी मंत्री के कबूलनामे को भी सबके सामने रखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल के एक टेलीविजन साक्षात्कार का संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने उल्लेख किया। सुश्री पटेल ने भारत के विरुद्ध आधारहीन आरोप लगाने और प्रचार करने में वैश्विक मंच का दुरुपयोग करने के लिए भी पाकिस्तान की निंदा की। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विश्व भर के नेताओं और सरकारों के सशक्त स्पष्ट समर्थन और एकजुटता के प्रति भारत आभारी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस से बात की। दोनों नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ ग्रीस का कड़ा रुख सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी हमारे संबंधों की गहराई को दर्शाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम आतंकी हमले में राज्य के पीड़ित परिवारों के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने पीड़ित परिवारों को शैक्षिक सहायता और नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर विद्यार्थी के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान सुगम बना रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवोन्मेषक समुदाय के नेताओं के पहले रणनीतिक सम्मेलन युग्म को संबोधित करते हुए ये बात कही।
ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार मेक AI इन इंडिया के दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही चर्चाओं के अंतर्गत भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच 23 से 25 अप्रैल तक वाशिंगटन में बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इन बैठकों में व्यापार शुल्क और गैर व्यापार शुल्क जैसे मामलों सहित कई विषयों पर उपयोगी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के आम चुनाव में कमला प्रसाद बिसेसर की जीत पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ अपने ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों को संजोए हुए है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले सभी 1,22,518 श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं और सुरक्षित, समृद्ध तथा सुखद यात्रा के लिए प्रार्थना की। पहली उड़ान लखनऊ से 288 और हैदराबाद से 262 जायरीन के साथ रवाना हुई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा कल अक्षय तृतीया से शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ होगी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई और चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। आकाशवाणी इस चारधाम यात्रा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण करेगा। महिलाओं की त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में आज कोलंबो में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 15 रनों से हरा दिया। भारत के 277 रनों के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका की टीम हासिल करने में नाकाम रही। श्रृंखला में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।